इस्कॉन, उसके इंचार्ज रह चुके हैं। और महाराज जब भी हमारे
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय बीजन वल्लभ गिरीवर धारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरीवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्यला प्रविष्ट। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की, जय श्री श्री व्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथ क्षेत्र श्री निराचल धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता यथारूप की, जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की इतिहास के बारे में बोलने के लिए मुझे आदेश किया गया है।
मोबाइल जिनके पास हो काइंडली साइलेंट मोड में कर दें, बीच में मोबाइल नहीं बजना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं यहाँ ये दिल्ली के अंतर्गत द्वारका धाम में श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश के भवन में उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृ वृंद को इस्कन की तरफ से, इस्कन दिल्ली और इस्कन वृंदावन की तरफ से स्वागत संवर्धना ज्ञापन करना चाहता हूँ। आप लोग तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश नीता गौर सुंदर के पूजा यहाँ करते रहते हैं। वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम श्री राधे श्याम सुंदर श्री नीता गौर सुंदर श्री प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रार्थना करूँगा कि आप सबको उनके शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो अभी कुछ दिन के बाद भगवद गीता की जन्मतिथि गीता जयंती उत्सव आने वाला है, शायद 2 दिसंबर के है ना, 2 दिसंबर को मुख्यतः एकादशी। ऐसे ही एकादशी तिथि हरिवासर है, सारे तिथि में सबसे शुभ माना जाता है, वैष्णव में सबसे महान तिथि माना जाता है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये माधव का तिथि है, भक्ति की जननी है वो तिथि। तो उस एक महीना में 2 एकादशी व्रत आता है, तो उसमें से ये जो एकादशी है जो मुख्य प्रदायिनी है, वो तिथि ही इतने सामर्थ्य रखता है, इसी को कोई स्मरण करे, कोई उसका पालन करे तो उसका वो मुख्य प्राप्त करा सकता है। मुख्य प्रदायिनी वो तिथि ही है। इस मुख्य प्रदायिनी तिथि में भगवद गीता की प्राकट्य हुआ था, तो मतलब भगवद गीता ही मुख्यदाता है। अगर किसको मुख्य प्राप्ति करना हो तो गीता की शरण में जाना होगा, है ना नहीं? तो गीता की जन्म ही इस मुख्य प्रदायिनी में हुआ था, हरिवासर में मुख्य प्रदान करने वाली तिथि में ही प्रकट हुआ था। इसे हम जानते हैं, सारे जनमानस में गीता तो सर्वाद्रुत है, विशेष करके भारतवर्ष में। शायद मैं सही सुना हूँ कि भारतवर्ष में भी आजकल भी होता है कि नहीं पता नहीं, कोर्ट में भी, कोर्ट कचहरी में भी ऐसे मान्यता है कि कोई व्यक्ति अगर सच कहता है कि झूठ कहता है, उसका देखभाल देखने के जानने के लिए गीता को छू करके बोलना होता, मतलब ऐसे होता है ना, गीता के ऊपर हाथ रख कर कर बोले, ऐसे आजकल कोर्ट कचहरी में होता है। मैं कोई गया नहीं कचहरी में, जो आप लोग गए होंगे कोई वकील वकालत किए होंगे शायद जानते होंगे, ऐसे मैं सुना हूँ, सही है? गीता को स्पर्श करके बोलने से आजकल के भौतिक युग के महामिथ्याचारी मानव भी विश्वास करता है कि सच बोलता होगा, है ना नहीं? मतलब गीता ग्रंथ का इतने प्रभाव है ना नहीं, कि इसको स्पर्श करने से हम आम आदमी विश्वास करते हैं गीता को स्पर्श किया तो मतलब गलत नहीं बोल सकता, वो तो सच बोलेगा, ये मान्यता है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में ही आदि शंकराचार्य ने गीता स्तुति में गीता के परिचय देते हुए कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे जो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मिनी श्रुतः। जो गीता है, जो साक्षात भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से निकला हुआ है, फिर उसको छोड़कर दूसरा दूसरा शास्त्र विस्तार से क्या मतलब है? जितने सारे शास्त्र वैदिक ज्ञान उपनिषद पुराण आदि है, ये सभी का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? ये सभी का लक्ष्य है भगवान को जानना, हमको जानना, है ना? नहीं, हमारा जो बंधन स्थिति बद्ध स्थिति से छुटकारा पाना, यही तो शास्त्र पुराण का उद्देश्य है। इसी ज्ञान को हमको देना। विशेष करके सारे शास्त्र पुराण उपनिषद में भगवान के बारे में भगवत ज्ञान मिलता है हमको। भगवान कौन है, कैसे हैं, इनके बारे में बताते हैं। आप बताइए, कोई आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई बताएगा, थर्ड पार्टी, वो जानते हैं, वो इसे हैं, इसे हैं, इसे हैं, उनका कहना कितना सही होगा? अगर वो जो व्यक्ति के बारे में बताते वही स्वयं वो व्यक्ति ही खुद अपना बारे में अगर बताए तो किसी को ज्यादा सत्य माना जाएगा, प्रामाणिक माना जाएगा? स्वयं बताएगा, है ना? जब स्वयं व्यक्ति अपने बारे में बताएगा तो बस वो तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। और दूसरा तीसरा व्यक्ति बताएंगे वो क्या? तो जितने शास्त्र पुराण उपनिषद आदि है वो भगवान के बारे में बताते हैं, लेकिन भगवद गीता वो पुस्तक है, वो ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं। यही फर्क है गीता में और दूसरे शास्त्र में, यही अंतर है कि गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, उन्हीं के परिचय, उन्हीं के प्रभाव, उन्हीं के क्रिया, उन्हीं के द्वारा ही बताया गया। और दूसरे शास्त्र पुराण उपनिषद में दूसरे ऋषि महर्षि बड़े बड़े विद्वत जन के द्वारा भगवान के बारे में बताया गया। तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक तो कोई भी आम आदमी बोलेगा, अरे भगवान स्वयं जब अपने बारे में बताएंगे तो उससे बढ़कर फिर क्या हो सकता। तो इसी को कहते हैं जो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मिनी श्रुतः, उसको छोड़ करके फिर किम अन्य शास्त्र विस्तरे, फिर दूसरा शास्त्र के पढ़ क्या पढ़िए? मतलब केवल गीता को कोई पढ़े श्रद्धा से, उसको समझने के लिए प्रयास करे, उसको आचरण में लाने के लिए प्रयास करे, तो जीवन में और किसी प्रकार की ज्ञान की पुस्तक, कोई शास्त्र, कोई उपदेश का आवश्यकता नहीं। सर्वोपरि संपूर्ण इसमें प्राप्त हो सकता है, किसी चीज का आवश्यकता नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान के द्वारा ये गाया हुआ गीत। भगवान और गीता के ऐसे शास्त्र है जो हमारे संसार में, संसार के क्या भारतवर्ष में जो भगवान की प्रोडक्शन केंद्र है भारतवर्ष, कई भगवान निकलते रहते हैं यहां से, बनते रहते हैं। तो भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए कि खैर भगवान कौन है, किसको भगवान माने, इस बारे में जो सभी के मन में इस प्रकार प्रश्न है, शंकाएं है, ये संपूर्ण प्रश्नों शंका को निवारण करने वाली भगवद गीता, उसका हर पन्ने पर ये ठोस प्रमाण सहित कहा गया है कि भगवान कौन है। यहां पर शुरुआत हुआ गीता की, प्रथम भगवद गीता की प्रारंभिक प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का जो प्रथम चरित्र है जिसके द्वारा गीता की शुरुआत हुआ है, वो कौन है? श्री धृतराष्ट्रोवाच। धृतराष्ट्र के ऐसे चरित्र हैं, आप लोग तो सभी जानते होंगे उनको थोड़े बहुत, है ना? नहीं, कोई अच्छे व्यक्ति थे क्या? वो नाम ही उनका ऐसे धृतराष्ट्र, राष्ट्र मतलब जमीन, राज्य, राज्य को राष्ट्र कहते हैं ना, धृत मतलब हड़प लेना, जो दूसरे का जमीन को, दूसरे के राज्य को हड़प लेता है उसको बोलते धृतराष्ट्र। तो ऐसे व्यक्ति जो जन्म से अंधा तो था ही, हर प्रकार से अंधा था, ज्ञान अंधा और हर प्रकार से अंधे थे, इतने अपने परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति आसक्त थे, और उनके चरित्र के बारे में आप लोग टीवी अगरा देख कर सीरियल देख करके अच्छे खासे जानते होंगे। ऐसे एक दुष्चरित्र को, ऐसे एक महान पवित्र हमारा धर्म ग्रंथ जो हमारे भारतवर्ष के ज्ञान के मुकुटमणि माना जाता है, ऐसे ज्ञान की धरोहर ग्रंथ का सर्वप्रथम शुरुआत में उनका नाम से शुरू होगा भाई। मंगलंग भगवान विष्णु मंगलंग गरुड़ध्वज, भगवान के नाम से शुरुआत होना चाहिए। शुरुआत हो रहा है कि इससे एक चरित्र धृतराष्ट्र के नाम से, गीता जैसी ग्रंथ क्यों? व्यासदेव जी जब रचना किए गीता को गड़बड़ी कर दिए क्या? कुछ और किसी का नाम नहीं क्यों दिए? शुरुआत से धृतराष्ट्र रखे हैं, उसका मतलब धृतराष्ट्र जी के अंदर ऐसा कोई खूबी होगा, कोई अच्छा गुण अवश्य निश्चित होगा जिसके कारण से उनको भगवद गीता का प्रथम नायक के रूप में चुना गया, रखा गया है ना। नहीं तो क्यों इतने महान पवित्र ग्रंथ उसके शुरुआत में उनको क्यों रखा गया? कोई अच्छे व्यक्ति को रखे है ना। तो क्या गुण था धृतराष्ट्र के अंदर? जब हम उनके चरित्र को विश्लेषण करते हैं देखते हैं कि उनके अंदर तो सारे दुर्गुण दुर्गुण भरा पड़ा था। कितने अन्याय, कितने पाप करते थे, कितने षड्यंत्र करते थे, आतताई के सारे षड्गुण उसके अंदर था, लेकिन फिर भी क्यों रखा गया? तो विचार करने पर पता चलता है कि एक ऐसे महान गुण था धृतराष्ट्र के अंदर जो उनको भगवद गीता के प्रथम नायक के रूप में चुना गया। यह महान गुण क्या था कि उनके अंदर सुनने की अभिलाषा था, श्रवण लालसा, सुनने की इच्छा थी, सुनना चाहते थे। इसलिए भगवद गीता के प्रथम श्री धृतराष्ट्र व धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? प्रश्न पूछा, मैं सुनना चाहता हूं, बताओ मुझे। सुनने के लिए ही उनने पूछा। ये जो सुनने की, श्रवण करने की इच्छा अपने आप में इतने महान गुण है कि धृतराष्ट्र जैसे दुष्चरित्र को भी सच्चरित्र बना दिया कि भगवद गीता के प्रथम कैरेक्टर के रूप में उसको चुना गया, क्योंकि वो सुनना चाहते थे, है ना। नहीं सुनना तो हम लोग भी कई चाहते हैं, लेकिन हम सारे गड़बड़ी सुनना चाहते हैं। सच बताओ, कोई अगर बुरा ना माने, ऑनेस्टली अपने आप से पूछ कर देखिए, हम क्लास में कभी बैठते हैं तो कभी झपकी भी आता है, कभी फोन सुनने के लिए इधर इधर उधर कई मन जाता है, कई प्रकार मन मन इतने नहीं लगता है। अगर अभी इलेक्शन हुआ होगा, उसका बुलेटिन, उसका रिजल्ट निकला होगा, तो उसको सुनने के लिए मन कितना इच्छुक होगा होगा। क्रिकेट का कमेंट्री, उसका सुनने के लिए कितना मन इच्छुक होगा। दूसरे ने पड़ोसी में, अड़ोस पड़ोस में किसका लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में सुनने के लिए मन कितना उच्चाट होगा, है ना। नहीं ये सुनने के लिए जो लालसा हमारा मन में है, ऐसा भगवत कथा सुनने के लिए लालसा होता है क्या? भगवत नाम गुण लीला सुनने के लिए नहीं ना, हमारा तो कम से कम नहीं है, आप लोग को पता नहीं। तो ये सच्चाई है, सुनना तो श्रवण इंद्रिय है और इसमें कभी ठिप्पी नहीं लगा गया। दर्शन इंद्रिय में तो आंख में पत्ता है, बंद भी हो जाता है, मुख बंद भी हो जाता है, लेकिन ये भगवान ने इसे दिए हैं सबसे प्रथम इंद्रिय है जिसको ज्ञानेंद्रिय कहा गया। और सही बात तो ये है, अभी तक हम जितने प्राणी इधर बैठे हैं, जो कुछ हम जाने हैं, सीखे हैं, और जो कुछ आगे चलकर जानेंगे सीखेंगे भी, केवल सुन करके, कोई उपाय नहीं। यहां तक कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके घर के पता क्या है, एवरीथिंग बिना सुने जान नहीं सकते। यही है ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान प्राप्ति करने का मार्ग है श्रवण, श्रवण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान के बारे में जो सुनना चाहेगा, इसीलिए ज्ञान के एक दूसरे नाम है, वेद का दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के विधि बिना श्रुति शास्त्र, श्रुति शास्त्र, क्योंकि सुन करके सीखते थे। पहले जमाने में ये पेपर पेन आदि तो था ही नहीं, तो लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करते थे? गुरु बताते थे और शिष्य सुनते थे, सुन सुन करके ज्ञान को प्राप्त करते, इसलिए इसका नाम है श्रुति। तो ये ज्ञान के बारे में सुनना आपने आप में एक महान गुण है। हम तो सब सुनते तो हैं, कान हमारा खुला रहता, लेकिन हम अज्ञान के बारे में सुनते हैं, जिसके द्वारा हम ऐसे बंधे हुए हैं और बनते और फंसते जा रहे हैं। लेकिन इससे निकलने के लिए भगवत ज्ञान, इस बारे में सुनने के लिए हमारा मन में इच्छा नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में श्रवण लालसा थी, सुनने का इच्छा था। यही एक महान गुण है जिनको इतने बड़ी पोस्ट पर रखा गया। तो जो भी हो, जब धृतराष्ट्र ने बोलना चालू किया तो गीता में कहा गया धृतराष्ट्रोवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। उसके बाद में वो पूछा अपने सेक्रेटरी को, संजय को, तो संजय ने कहा, तो कहा संजय उवाच, संजय ने कहा। तो जब अर्जुन ने बोला तो अर्जुनोवाच, दुर्योधन ने बोला दुर्योधनोवाच। लेकिन ये तो थोड़े थोड़े बोले हैं, सबसे ज्यादा बोले कौन गीता में? कृष्ण। कभी भी जब कृष्ण बोले, कहीं एक पेज में लिखा कि कृष्णोवाच लिखा है? श्री कृष्णोवाच नहीं ना, क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। उसका मतलब कृष्ण ही श्री भगवान है, गीता उसका प्रकट प्रमाण है। गीता उसके प्रमाण करके दिखाता है हर पन्ने पर कि श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण जो बोलते हैं तो कृष्ण वाच ना लिख करके श्री भगवान वाच लिखा, क्योंकि वही श्री भगवान है, कृष्ण ही परमेश्वर श्री भगवान है। गीता के प्रथम ज्ञान ही है। अगर कोई गीता पढ़ करके समझना चाहता है तो उसका सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन, सबसे प्रथम योग्यता गीता पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? कि कृष्ण को भगवान के रूप में माने, अदरवाइज इम्पॉसिबल। गीता के बारे में कुछ नहीं जान सकते। गीता के वक्ता को अब नहीं मानते तो गीता कैसे मानेगा, गीता क्या समझेगा? और ओके, मान लियो कृष्ण भगवान है, मान लिया, केवल ईशन मानने से नहीं चलेगा। जो उवाच श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। कोई जब कह रहा है तो कोई शून्य कभी कहेगा? जिसका आकार नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, वो कैसे कहेगा, कैसे सुनेगा? उनको कोई पूछेगा वो बोलेगा कैसे? तो मतलब जो बोलने वाला है वो तो कि व्यक्ति होना चाहिए ना, बिना व्यक्ति तो बोल नहीं सकता है ना। नहीं, और इसे ज्ञान के बाद तो कोई पशु पक्षी तो इसे नहीं बोलेगा। तो श्री भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति है, इसको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो कितना नहीं समझ में आएगा। परम पुरुष श्री भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम श्री कृष्ण है, ये दो तथ्य को मूल रूप से जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, तब जाकर गीता में हाथ लगाओ, है ना। नहीं, क्यों? गीता को जब पढ़ना है सबसे पहले देखो कवर पेज पर ये जो चित्र है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण को ड्राइवर के रूप में, सारथी के रूप में बैठे हैं, घोड़े के लगाम हाथ में लिए हुए हैं, एक हाथ में चाबुक लिए हुए हैं, और पीछे रथ के ऊपर अर्जुन बैठे हुए हैं। तो मतलब गीता के अंदर जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसको कहा गया श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। इसके अंदर जो वार्ता है, जो विषय है, ये दोनों व्यक्ति के अंदर बातचीत है। ये दोनों व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्त अर्जुन। तो केवल भगवान को समझने से नहीं होगा, उनके भक्तों को भी समझना होगा। भक्त और भगवान को समझने से गीता समझ में आएगा। उसका मतलब आपको भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि गीता को समझा कौन? अर्जुन समझा ना। भगवान ने इधर हजारों लोग थे, किसी को नहीं बोले, अर्जुन क्यों बोले? बाकी बड़े बड़े लोग थे, पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, आचार्य कृप थे, युधिष्ठिर धर्मराज थे, ऐसे बड़े बड़े पुरुष सब थे, लेकिन अर्जुन को क्यों बोले उन्होंने? भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। हे अर्जुन, तू मेरा मित्र नहीं है, तू मेरा भक्त भी है, तू मेरा सखा भी है और मेरा भक्त भी है। आप इस रहस्य को समझ पाओगे। ये भगवद गीता क्या है? ये रहस्य शास्त्र है, भगवान स्वयं कहते हैं ये रहस्य है। आप लोग सब हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हैं, रहस्य शब्द का क्या अर्थ आप समझते हैं? सीक्रेट, गोपनीय है, सही। थोड़ा सोच कर बोलिए, फिर रहस्य को क्या गोपनीय कह दिए होते? नहीं नहीं, ठीक से और सोचिए। रहस्य का अर्थ केवल सीक्रेट नहीं, कोई वस्तु छुपा हुआ है उसको आप रहस्य बोलेंगे ना? छिपा हुआ बोलेंगे, गोपनीय बोलेंगे? हाँ, जी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो भी रहस्य नहीं है। कॉन्फिडेंशियल तो गोपनीय है, मिस्ट्री इंग्लिश से बोले उसको। अब मैं हिंदी में पूछता हूं रहस्य का अर्थ क्या होगा? मिस्ट्री, करेक्ट। रोचक ना, एक रहस्य का मतलब है कि ऐसा चीज है जो आपको चक्रानों में डाल दे, चक्कर में डाल दे। आया समझ में? छुपा हुआ नहीं है, तो आपका सामने ही है लेकिन आप समझ नहीं पावे, वो है रहस्य, है ना? मिस्ट्रियस, कि है क्या चीज, मैं देख रहा हूं फिर भी नहीं समझ रहा हूं, ये है रहस्य। चक्राने वाला जो आपको चक्कर में डाल दे, है क्या, समझ में नहीं आ रहा, ये है रहस्य। ये कोई गोपनीय नहीं, प्रकट है लेकिन फिर भी हमारा पल लेना पड़े। तो भगवद गीता ऐसी ज्ञान है, क्या है वो? रहस्य है। तो कैसे समझे उसको? रहस्य ही अपने आप की चक्कर में डालने वाला है। तो उसको समझने के लिए भक्त होना पड़ेगा। भगवान बोले आप भक्त हो इसलिए इस रहस्य को समझ पाओगे, बाकी कोई समझ नहीं पाएंगे उसको। सही में आज तक इस भगवदगीता, जो भगवदगीता हम देखते हैं जिसके चित्रपट पर कृष्ण और अर्जुन रथी और सारथी के रूप में है, सारथी और रथी के रूप में है, इस भगवदगीता लगभग 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो दिया गया था, बोला गया था, उसके ऊपर आज तक लगभग 500 से अधिक भाष्य लिखा गया है, और भी कितने लिखा जाएगा। लोग बड़े बड़े अभी भी अपने बुद्धि लगाकर उसको अर्थ करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं पा रहे, अरे और भी, अच्छा ऐसा भी है क्या, ऐसा भी है क्या, अभी तक करते रहते हैं। हजारों साल बीत गए, 5,000 साल बीत गया, अभी भी मनीषी गण उसके ऊपर बुद्धि लगाते हैं और बोलते हैं अच्छा मैं तो ये समझ रहा था, ये है क्या, अभी भी चक्कर में डाल रहे हैं हम लोग को, हम लोग तो कोई गिनती में ही नहीं है। ऐसे है शास्त्र, ये रहस्य है। इस भगवद गीता का इतिहास तो हम देखते हैं कि 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जब युद्ध का शुरुआत हो गया था, मैं निर्णय हो गया कि युद्ध होगा, वेन्यू भी डिसाइड हो गया, कहां होगा, कुरुक्षेत्र में होगा, धर्म क्षेत्र में होगा, है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुष्व, धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में सब इकट्ठा हुए हैं। किस लिए इकट्ठा हुए हैं? लड़ाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई फिस्ट करने के लिए थोड़ी। किस लिए इकट्ठा हुए हैं? जुजुष्व, युद्ध करने की इच्छा से, उनका प्रोजेक्ट है लड़ मरे, इसलिए इकट्ठा हुए हैं इधर सब। क्या अर्जुन को पता नहीं था कुरुक्षेत्र को जब गया आपने इंद्रप्रस्थ से रथ सजा करके अपने रेडी हो करके सारथी को फिट ड्राइवर को लेकर के जब चला यहां से लड़ाई के मैदान पर कुरुक्षेत्र में, क्या उसको पता नहीं था मैं किसके साथ लड़ूंगा? आप लोग बोलिए पता था ना? नहीं पता था, अच्छी तरह से पता था, उनके लिए पूरी व्यवस्था करके गया था, और यहां खड़े हुए विभ रचना करके, खड़े होने के बाद में शंखनाद भी हुआ, है ना? नहीं, उनके तरफ से शंख बजा, उसके उत्तर से शंख बजाए, तब भी देख नहीं रहता कौन शंख बजा रहे, उनके उत्तर में शंख बजाए, बिल्कुल शुरुआत अच्छी तरह से जानकार के साथ हुआ था, मैं किसके साथ लड़ रहा हूं, ये कौन है, उनका आईडी अच्छी तरह से पता था उनको। अब जब शंखनाद होने के बाद में अर्जुन ने ऐसे वीरवाणी से घोषणा किए, हे अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम्, हे भगवान अच्युत, हे मेरे ड्राइवर, मेरे कार ले जा करके बीचों बीच में पार करो, दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, उभय सेना के बीच में मध्य भाग में मेरे गाड़ी को पार करो, रखो। क्यों भाई बीच में जाना चाहते, तेरे पोस्ट इधर, इधर से लड़ो इस तरफ से, नहीं, किस लिए ना, मैं देखना चाहता हूं मेरे लायक समासकंद योद्धा कौन है, मैं महाधनुर्धर योद्धा हूं, मैं ये एरे गरेर के साथ थोड़ी लड़ूंगा, ऑर्डिनरियों के साथ, मैं मेरे लायक योद्धा के साथ लड़ना चाहता हूं, थोड़ा नजदीक जाकर देखना चाहता हूं कि मेरे लायक योद्धा कौन है, वीर कौन है। भगवान बोले ऐसा चलिए ले जाता, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुआ है, सब सिटी बच चुका है, अब सावधान पोजीशन में गन पॉइंट पर दोनों सेनाएं दोनों तरफ से खड़े हैं, और बीच में एक रथ निकल कर गया, जाके मिडिल पॉइंट में बिल्कुल खड़े हो गया। और भगवान भी कैसा है, ले जाकर कहां खड़ा करे, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, बिल्कुल भीष्म द्रोण का सामना, इन फ्रंट ऑफ प्रमुख, उनके सामने जाके रथ खड़ा कर दे। और देखा बोले अर्जुन ये देखो, ये तेरे क्या होंगे भीष्म, उनके नाना नहीं दादा, ये दादाजी है, ये तेरे गुरुजी हैं, दोनों और ये तो सामने ही है आपके तेरे। क्या अर्जुन को पता नहीं था कि दादाजी गुरुजी आगे करके लड़ाएंगे, पहले तो पता तो था उसको, सबको पता था, लेकिन यहां पहुंच करके जो इतने वीर डिंग हंकर बोला था, ले चलो मेरा रात को, मैं देखता हूं किसका साथ लड़ू, तैयार होकर गया था, वहां पहुंच करके बुखार 104, हाँ? अर्जुन स्वयं बता रहे हैं कि मेरा चर्म में जलन हो रहा है, बोल रहे हैं ना, हाँ बहुत गर्मी पैदा हो, मतलब बहुत टेम्परेचर आ गया, हीट दहति, जल रहा है मेरा शरीर, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, इसी स्थिति में आ गया, धनुष बाण फेंक करके सर में हाथ देकर बैठ गया, है ना नहीं? अब दोष देने लगा, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, अरे भाई क्यों नहीं लड़ूंगे, कथं स्वजनम आहवे, स्वजन को कैसे वध करूंगा मैंने, ये कोई दूसरा थोड़ी है, वो मेरे परिवार के मेरे स्वजन है, तुझे पहले पता नहीं था क्या, लड़ाई तो कई सालों से अपने परिवार से चल रहा है, अभी बोलते स्वजन के साथ कैसे लड़ू परिवार वालों के साथ, फिर बोलता नहीं, कुलक्षं कृतं दोषं मित्र द्रोह च पातकम्, कुलक्षय हो जाएगा, ये दोष लगेगा, पाप लगेगा, पाप भय है, मित्र द्रोह है, कई प्रकार के दोष दिखाया, बोला मैं नहीं लड़ूंगा। जब व्यक्ति, इसलिए भगवद गीता के प्रथम अध्याय को कहा गया अर्जुनस्य विषाद योग, वो विषादग्रस्त हो गया था, शोक मोह और भय ये तीन से ग्रस्त हो चुका था, आपने आप को वो व्यक्ति देह मान रहा था, मैं ये शरीर हूं, ये सब मेरे शरीर के संबंधी है, इसी के ऊपर विचार करके, मान्यता करके, शोक से मोह से भय से ग्रस्त हो चुका था, वही था उनका विषाद। हम जितने यहां बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं, सभी का आप अनिष्ट सोच करके देखिए, यही हाल है, हम सभी अपने आप को इस शरीर मानते हैं और बाकियों को अपने संबंधी मानते हैं, और इस मान्यता के कारण हम मोहग्रस्त है, शोकग्रस्त है और भयग्रस्त भी है ना, ना? इन तीनों से कभी बचे अभी आपने? तो अगर आप सचमुच सुखी होना चाहते हैं, शोक मोह भयापहा, शोक से मोह से भय से नहीं बच पाएंगे तब कभी सुखी हो नहीं सकते, तीन से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन का इस तीन के विषाद से ग्रस्त होने के कारण ग्रस्त करा करके भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किए। उन्होंने पूछा, इस उपदेश के द्वारा अर्जुन इस तीनों से उतर गए, बाहर चले गए, शोक मोह और भय रूपी विषाद से छुटकारा प्राप्त हो गया। तो कोई भी व्यक्ति इस गीता रूपी ज्ञान को आस्वादन करेगा तो वो भी शोक मोह भय आपहा, शोक मोह और भय से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसलिए शुरुआत से दिखाया कि विषाद है ना, दुख दिखा करके इससे कैसे उबारा गया उपदेश से। तो ये तो उनका इतिहास है 5000 साल पहले। इसका मतलब ये नहीं कि भगवत गीता जब लड़ाई झगड़ा होता होगा तभी जाकर बोलो, क्योंकि ये शुरुआत हुआ था लड़ाई झगड़ा के शुरुआत में, ऐसा नहीं। इस भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय में भगवान ने प्रथम शुरुआत करते हैं, श्री भगवान वाच तीसरा अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा था उसके उत्तर देते हुए भगवान ने कहे कि अर्जुन, जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासद, इस महाशत्रु आपका जो असली शत्रु है ये कोई तरह शत्रु नहीं है, असली शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा था एक प्रश्न भगवान को तृतीय तीसरा अध्याय में कि भगवान, अथ केन प्रयुक्ते पाप चरति पुरुषः, कोई मनुष्य पाप क्यों करना चाहता है? कोई भले आदमी पाप करना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, अच्छा काम करना चाहेंगे, लेकिन फिर पाप क्यों करते हैं? सब जानते हैं पाप करना खराब है, गलत है, नहीं करना चाहिए, जानते हुए समझते हुए फिर क्यों करते हैं? ऐसे बात है, चोरी करना गलत है ना? नहीं, गलत कम है ना? चोरी करना कितना गलत है ये हम जितना जानते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा चोर जानता है। चोर को बहुत अच्छे तरह से मालूम है चोरी करना कितने गलत है, माने कितने, कौन सा चोरी करने से कितना गलत है, कौन सा चौकी में कौन सा पुलिस है, उनका कौन सा नेचर है, कितना अच्छे तरह से पता है। चोर को जितना ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन सब पता हुए भी वो फिर चोरी करता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, जो व्यक्ति जानता भी है ये गलत है, उचित नहीं है, मुझे करना नहीं है, इसे जान करके समझ करके फिर पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, पाप कर्म क्यों कर रहा है? केवल इतना नहीं, अर्जुन कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यं पाप चरति पुरुषः, अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। ऐसे देखा जाता है इच्छा न होते हुए भी पाप पूर्ण काम करने के लिए मन में कोई विचार नहीं, इच्छा ही नहीं, मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसा कोई जबरदस्ती उसको पाप काम में लगा ही देता है, उनसे पाप काम जबरदस्ती कोई करा ही देता है, अनिच्छिन्न भी वार्षणीय इच्छा न होती वो भी बढ़ाद भी नियोजित, बलपूर्वक इस काम में नियोजित किया जाता है उसको, ऐसे क्यों? सभी का केस ऐसा ही है ना? हाँ, तो इसी केस हमारे प्रतिनिधि बन करके अर्जुन ने सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा, बोला आप ही बताइए, दूसरे किसी को पूछू क्यों, आप ही बताइए ऐसा क्यों? हम नहीं चाहते गलत काम करने के लिए, लेकिन हमसे कराया जाता है, व्हाई? तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिए, बोले ये जो कराता है, तू नहीं चाहता है गलत काम करना, पाप करना, लेकिन तेरे से जो कराता है वो जानते हैं कौन कराता है ना? कौन ना? काम ये सब क्रोध हुए सर रजोगुण समुद्र, बोले काम ही कराता है, काम उनके भाई क्रोध है, कामानुज, काम के अनुज है कौन? क्रोध। ये दो भाई बैठ करके ये काम कराते हैं आपसे, भगवान सीधा उत्तर दिए, इन दोनों का नाम लिए, काम ऐसा क्रोध है ऐसा, कहां से आए उनका, उनका ठिकाना कहां है? ना रजोगुण समुद्भव, उनका घर ठिकाना जानना चाहते, उत्पन्न कहां से हुए? और रजोगुण से पैदा होते हैं। अच्छा, रजोगुण से पैदा होकर के मुझे इसी पाप में लगाते हैं, मैं अभी उनको सफाया कर देना चाहता हूं, अर्जुन महावीर है, बोले उनको मार दूंगा खत्म, शत्रु मर जाएंगे तो फिर मेरा समस्या समाधान हो जाएगा। बताइए कहाँ उनके, उनका कैंप कहाँ लगाए, उनका ऑफिस कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है ये दोनों शत्रुओं का। तो भगवान बोले अच्छा तो उनको मारना चाहते हैं, हेडक्वार्टर का पता बता दूं ना, हम बताइए उनका कहाँ टेंट लगा के बैठे। तो भगवान ने तीन एड्रेस बताया, बोले तीन जगह पर बैठे उन्होंने। अब सुनने से आप भी घबरा जाएंगे, हम सभी का ये हाल है, हम भी जाना चाहते हैं मिटा दें, फिर हम कोई पाप कर ही नहीं सकते। पाप काम में जो हमको लगाते हैं दो व्यक्ति को अगर हम हटा दें मार दें तब तो फिर गया, हम फिर गलत काम को कर ही नहीं सकते। तो बड़ा उत्सुकता होता है कहाँ बैठे होते दोनों। तो भगवान कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियाणि अस्य अधिष्ठान उच्यते। उसका एड्रेस क्या है, अधिष्ठान क्या है, मन बुद्धि और इंद्रिया। लड़ो मारो, मार सकता किसे मारेगा, हमारा दृष्टि तो वही दृष्टि जो देखते हैं बाहर को देखते हैं, सुनते हैं बाहर को सुनते हैं, खाते हैं बाहर की चीज खाते हैं, कोई गंध लेते हैं बाहर की, छूते हैं बाहर को, सब कुछ बहिर्मुख है और वो अंदर बैठे हैं लोग। उनका हमारा हाथ कात शक्ति कोई पहुंच ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते हो जहां बैठे हैं। अपना मन में बैठे हैं दोनों भाई, बुद्धि में बैठे हैं और इंद्रिय में बैठे हैं लो, क्या करोगे। अर्जुन छुप गए, बोले बाप रे बाप इतने खतरनाक, इसी इसी जगह पर बैठे हैं ना, यस इस जगह पर उन्होंने कैंप लगाकर बैठे, अब कैसे उनको, अब इस तीनों में तो हम कुछ कर नहीं सकते। बोले फिर ना, फिर भी करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो अच्छा बनने के लिए तो फिर इन तीनों को हटाना पड़ेगा, तीनों जगह से कैसे हटाऊं। तो उसका भी तरीका बताते, उसका कौशल है, सीधा मन से बुद्धि से आरंभ करो, पागल हो जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलते स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तो भगवान बताते हैं स्टेप। तस्मात आदो इंद्रियाणि संयम्य, इसलिए देयरफॉर सबसे पहले इंद्रिय को नियमन करो, इंद्रिय को संयम करो। इंद्रिय संयम होगा तो मन को संयम करो, फिर बुद्धि। तो इस बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके फिर इंद्रिय को वश में करके जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासद, हे महाबाहु इस बुद्धि के द्वारा इस महाशत्रु काम को पराजित करो, और क्रोध भी पराजित हो जाएगा, दोनों भाई हार जाएंगे। तो अर्जुन तुरंत प्रश्न मन में उठा, आप तो कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की आत्मज्ञान के द्वारा बुद्धि को तेज करके, बुद्धि के द्वारा मन फिर इंद्रियों को वश में करके काम और क्रोध को वश में करूं, उनको मिटा दूं, और काम क्रोध के बिना कोई युद्ध कैसे कर सकता है। आप बोलते हैं लड़ाई करो, आप बोलते हैं मुझे युद्ध करो, युद्ध कोई कर पाएगा काम और क्रोध के बिना, आप बताइए संभव है। आपको अंदर गुस्सा ही नहीं आएगा तो लड़ेगा कैसे, लड़ने के लिए पहले कितने प्रैक्टिस करना पड़ता, गुस्सा को लाना पड़ता है ना नहीं। काम क्रोध नहीं हो तो युद्ध कैसे हो सकता। आप तो अच्छे बात कह रहे हैं, भगवान बोलते हैं काम क्रोध को मिटा दो, महा शत्रु हैं, और बोलते हैं लड़ाई करो। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं, इसे क्या मुझे आप जो बता रहे हैं इसका कोई हिस्ट्री है, कोई पहले किसी कोई किए ना नहीं, मुझे आप बता रहे हैं। भगवान ने पहले बताते अस्तित्व जनकादय, बोले बहुत पहले जनक जैसे राजर्षि भी इस ज्ञान को प्राप्त करके समय पर लड़ाई भी किए थे, क्षत्रिय धर्म को निभाए थे। बोले इस ज्ञान को सुने थे, इस ज्ञान कहां से सुने थे, आप जो बता रहे हैं उसका कुछ सही प्रामाणिक स्रोत, कोई परंपरा कोई है ना नहीं, कोई इतिहास है उसका। तो भगवान तुरंत अर्जुन का इस प्रकार मनोभाव को जान करके उत्तर देते हैं। चौथा अध्याय शुरुआत होता है भगवान के उत्तर से, श्री भगवान वाच, जो तीसरा अध्याय शुरू हुआ था अर्जुन के प्रश्न से, ये उत्तर से शुरू हो रहा है। उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं सबसे प्रथम श्री भगवान वाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्यय, विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्वाकवे ब्रवीत। यही परंपरा है ज्ञान की। बोले मैं सबसे पहले इस गीता को लिए, गीता ज्ञान के लिए भगवान ने एक शब्द दो विशेषण दिए, इमं विवस्वते, इमं मतलब ये भगवत गीता के ज्ञान, जिस ज्ञान को अर्जुन बुद्धि बोलते, इसको, इस ज्ञान को जो मैं तुझे अभी बता रहा हूं, मैं किसको दिया था पहले, विवस्वते विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? भगवान सूर्यदेव है। सूर्यदेव ये भी एक व्यक्ति है जो सौर मंडल के मालिक है, ऐसे भागवत आदि पुराण से पता चलता है। सूर्य एक ग्रह है। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा जस्य ज्ञाया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। समस्त ग्रहों के राजा सूर्य है, ग्रहराज, और अशेष तेजा, अशेष तेज संपन्न है। और क्या करते हैं ना, भगवान गोविंद के आज्ञा से जस्य ज्ञाया भ्रमति काल चक्रो, काल चक्र के रूप में भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। सूर्य के रथ का वर्णन श्रीमद भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में प्राप्त होता है। इसे कहा गया है कि भगवान सूर्यदेव साक्षात अपने गाड़ी रथ के ऊपर बैठे हैं, उनके रथ में 7 घोड़े हैं, 1 चक्का है। अभी तक तो ऐसा गाड़ी कोई देखे हैं आपने? 1 व्हील, 1 पहिया है इसका, 7 घोड़े हैं, मतलब 7 इंजन है और 1 चक्का हो, और उनके सारथी ड्राइवर भी है अरुण, वो ड्राइविंग स्वयं नहीं करते, हम रथी है, मालिक है, वो बैठे हैं, ड्राइवर अरुण बैठा है, 7 घोड़े को चला रहा है, 1 चक्का पर सूर्यदेव बैठे हैं, और उनके साथ सूर्यदेव को भगवान को विवस्वान को स्तुति करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी पूजा आदि करने के लिए कई लाख बालखिल्यादि ऋषि बैठे हुए हैं, कई लाखों, मतलब छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, जिसमें 8-10 लाख ब्राह्मण और ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, सूर्यदेव की ओर मुंह करके उनको स्तुति कर रहे हैं, और भगवान सूर्य बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है, और जो गाड़ी चल रहा है उनके स्पीड के बारे में भागवत बता रहा है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में लगभग 14,170 किलोमीटर, 1 सेकंड में कितना चलता है, 14,170 किलोमीटर पर सेकंड, पर मिनट आप हिसाब करके देख लीजिए, कैलकुलेटर किसका पास है तो, पर घंटा फिर देख लीजिए कैलकुलेटर हैगा होगा कि नहीं क्षमता है कि नहीं कैलकुलेटर, पर सेकंड 14,170 किलोमीटर पर सेकंड, इतना स्पीड है उस रथ का। अभी तक इस भौतिक ब्रह्मांड में ऐसा गतिशील जान कोई है जो रॉकेट भी करते हैं, ये भी इतना स्पीड है क्या, पर सेकंड में इतना किलोमीटर जाए, ये इस स्पीड में चल रहा है और कंटिन्यूअस चलता रहता है, 4 स्टेशन बताएगा उनका, और चलते रहते हैं। जस्य ज्ञाया भ्रमति समृत काल चक्र, भगवान के अर्डर को पालन करके वो चलते रहते हैं। ये भगवान सूर्यदेव है, विवस्वान जिसका नाम है, वो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, सिद्धदेव उनके पुत्र थे, विवस्वान के पुत्र, ये सूर्यदेव हैं विवस्वान, तो उनको बताए थे भगवान, बोले मैं उनको पहले बताया, और कब बताया उसका हिसाब किताब कर देखने से पता चलता है कि ये तो कलयुग चल रहा है, कलयुग से पहले द्वापर गया, उसके पहले त्रेता गया, और त्रेता के आदि में महाभारत वर्णन था, त्रेता के आदि में महाराज इक्ष्वाकु को ये ज्ञान मिला था मनु के द्वारा। ये सूर्यदेव भगवान के पुत्र है मनु, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है, उनके पुत्र है वैवस्वत सिद्धदेव, उनको बताए सूर्य ने और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताए, इक्ष्वाकु पुत्र है आप, और किसी को बताया हूं? तो लगभग हिसाब करके देखा जाए लगभग 12-13 करोड़ साल पहले भगवान ने इस भगवद गीता के ज्ञान को भगवान सूर्य को बताते हैं, वो फिर और किसी को परंपरा चल के आ रहा था बता रहे। तो इसलिए भगवान इस प्रथम श्लोक इमं विवस्वते जोगम, ये ज्ञान नहीं बता रहे हैं कि श्लोक नहीं बता रहे हैं, मैं गीता की ज्ञान, ये गीता की श्लोक नहीं, क्या बोलते हैं, मैं विवस्वानु क्या बताया था, जोगम, ये जोग शास्त्र है। आप जब भगवद गीता को सही से पढ़ेंगे, अपना ये भगवद गीता में लिखा नहीं, जो मूल भगवद गीता आप जो पाठ किए होंगे उसमें भगवद गीता के अंत में प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ऐसे लिखा होता ना, क्योंकि गीता उपनिषद है, श्रीमद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां, ये गीता क्या है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, इसलिए हरेक अध्याय हरेक एक एक योग है, ये योग शास्त्र है, ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई साधारण विद्या नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है उसको भगवान कहते हैं इमं विवस्वते जोगम, ये जो योग विद्या है योग शास्त्र। योग शब्द का साधारण अर्थ आप जानते हैं क्या है, जोड़ना, करेक्ट, योग मतलब जोड़ना, एक से दो योग करो तो तीन होगा, जोड़ने से जोड़ना। लेकिन आजकल दिल्ली में तो कई सारे होगा योग प्रशिक्षण केंद्र, बड़े बड़े योगीराज आकर के योग टीचर योग सिखाते हैं, उस योग को योग में एक्सपर्ट होने के बाद जो योग में बिल्कुल सिद्धि प्राप्त कर जाते हैं, तो अब क्या मिलता है आपको, क्या प्राप्त करते हैं, नहीं वेट लॉस होता है आपका, सही बात ऑनेस्टली बताओ ना, जो योग करने जाते हैं तो अपने चर्बी घटाना जाते हैं ना, योगा यही तो योग है ना, नहीं वियोग है ना, तो जो कैसे है, जब घटना तो वियोग होता ना, तो जो कैसे कहते हैं उसको, कहना ही गलत है ना, तो वियोग कहना चाहिए, जो क्यों कहते हैं, मैं जोग करना चाहता हूँ, जोग करके मैं घटाना चाहता हूँ अपने आप, अरे तू घटाएगा तो वियोग होगा, जोग कैसे होगा, जोग मतलब तो जोड़ना है, कुछ और आड करो तो है ना, नहीं तो असली जोग का अर्थ है हमको भगवान के साथ जोड़ना, मतलब भगवान के बारे में जानना, भगवान के साथ मिलना, ये है योग। तो ये जो ज्ञान है भगवान के साथ मिलाएगा, भगवान के ज्ञान देता है, ये योग शास्त्र है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान, ये योग को मैंने प्रोक्तवान में कहा, इमं अव्ययम, दूसरा विशेषण क्या दिए इस ज्ञान के लिए, वो कैसा ज्ञान है, अव्यय है, अविनाशी है, वो कभी मिटता ही नहीं, ऐसा ज्ञान है। कभी अभी डेली सुबह सुबह हम लोग का आदत है अखबार पढ़ने का, सुबह बेड से उठे नहीं उठे अखबार वाला के डाल देते हैं, उठाकर पढ़ते हैं, फिर शाम तक फिर कूड़े दाने पर जाता है ना, नहीं दूसरे दिन को अरे काल का पेपर है छोड़ो यार, है ना, नहीं कुछ घंटे के बाद तो बेकार हो जाता है ना, नहीं लेकिन ये भगवद गीता है अभी तक तो हमारे हिसाब से 5000 साल पहले का है, तो उठाकर कोई रख देते हैं क्या, यही तो बहुत पुराना है, उसका डेट देखो कौन सा डेट का है, कौन सा दिन का, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अव्यय है वो, तो अविनाशी है ये ज्ञान, कभी बिना हमेशा नित्य नूतन है। और अव्यय का और एक अर्थ है अपरिवर्तनीय, जिसका कोई चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजेबल, परिवर्तन नहीं हो सकता उसका, वही ज्ञान आज इट इज आ रहा है। प्रभुपाद जी ने कभी कभी कहते हैं हम लोग का जो प्रचारक है जो गुरुवर्ग है उनका असली पहचान क्या है, एक पोस्टमैन की तरह, पोस्टमैन आपका कोई लेटर आया कि मनी ऑर्डर आया उसमें कुछ निकाल देता है कुछ डाल देता है ऐसा करके लाके देता है क्या, कुछ नहीं कर सकता, नो एडिशन नो डिडक्शन, आज जैसे को तैसा लाकर आपको दे देगा, आप चाहे बोले उसको गाली दो थैंक यू दो कोई बख्शिश दो, लेकिन वही उसका काम है जो आया सो आपको दे दे, उसका अपनापन कुछ नहीं चला है उसमें, कोई तोड़ मरोड़ कोई एडिशन रिडक्शन कुछ ना कर। तो यही काम हम लोग का है, हम अपना मनमानी को नहीं लगा, जो है उसको ऐसे आपको दे दें चाहे आप हमको थैंक यू कहे या गाली दे, कोई मतलब नहीं, हमको दे दिए बस, वही चीज है। तो इसलिए अव्यय ज्ञान है, इसी तरह से आया है, भगवत प्रदत्त है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो साक्षात भगवत वाणी है उसे कौन चेंज कर सकता? तो ये भगवत वाणी, ये भगवत ज्ञान, एक विचार मन में आता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने सबसे पहले करोड़ों करोड़ों साल पहले सूर्य को दिया था ये ज्ञान, वो सूर्य भगवान में मनु को दिया, मनु ने अपने लड़का अख्याकु को दिया। तो मतलब क्या, हम जो सोचते हैं, हमारा मन में विचार होता है, गीता तो लड़ाई के मैदान में दिया गया था, तो सूर्य भगवान लड़ाई करते थे क्या, तब दिया गया था क्या, वो उनके लड़का को फिर लड़ाई के समय दिए थे क्या? तो ज्ञान लड़ाई के समय का ज्ञान हो तो उनके अंदर उनके युद्ध हो रहा था क्या तभी? नहीं, इस ज्ञान कोई किसी भी स्थिति में दिया जा सकता है। उसमें ये समझना होगा कि ये ऐसा एक ज्ञान है, भगवान ने प्रवचन दिए इस स्थिति पर दिए, ना तो कोई बैठने के लोग बैठे थे, क्लासरूम था, सभा भवन था, अच्छा से गालीचा बिछा हुआ था, व्यासासन लगाया हुआ था और पानी फानी साउंड सिस्टम लगाया हुआ था, इस प्रकार भगवान ने प्रवचन दिए, ये कुछ नहीं था। कैसे जगह में दिए? लड़ाई के मैदान पर। सुनने वाले कौन थे? दोनों तरफ से सेनाएं थे, गन पॉइंट पर ऐसी स्थिति में थे, मरने के लिए इकट्ठा हुए थे। यहां का दूसरा विचार किसका है? मरने मारवाने मारने के लिए जहां इकट्ठा हुए थे, इसी स्थिति पर यहां कोई प्रवचन सुनने का स्थिति थोड़ी था, ना कोई आसन था। और अर्जुन रो रहा था, धनुष फनुष फेंक करके, सर में हाथ देकर बैठ करके हताश हो रहा था। इसी स्थिति में वही ड्राइवर के पोस्ट में खड़े खड़े स्टीयरिंग पकड़े हुए, एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़े हुए थे, पकड़े हुए उसको समझाने के लिए कुछ बोल दिए, वही गाड़ी के ऊपर खड़े हुए ड्राइवर की सीट पर, वही स्थिति पर उसको बोल दिए, वो बोलना अर्जुन को समझाने के लिए जो बोली, घंटे भर जो समझाने के लिए जो बात बताए, वो बात इतने महान है कि जुगपत उसको ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ उपदेश करके माना जाएगा। अगर भगवान ने बैठ करके आराम से सोच विचार करके बोले तो, यही तो मैं बता रहा हूं, ये भगवान है। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन मुख्य देवता है, तीन का तीन डिपार्टमेंट है, जानते ना नहीं? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इंजीनियर है, बनाने वाले हैं, और शिव जी मिटाने वाले हैं, और पालन करने वाले विष्णु है, मेंटेन करते हैं। अब आप सब बताइए, आपके कोई छोटे मोटे परिवार होंगे, चार पांच व्यक्तियों की, परिवार को बनाना ज्यादा कष्ट है, मिटाना कष्ट है, ना मेंटेन करना कष्ट है? सब मानते हैं इस बात को, है ना? भाई मेंटेन करने के लिए हमको जॉब करना पड़ता है, इतने भी नहीं बनता, ओवर टाइम करना पड़ता है, ओटी करके भी फिर भी नहीं होता, फिर घर में आकर के सतेज होना पड़ता है, कपड़ा वर्दी उतार करके गमछा पहनकर फिर भी काम करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए, है ना? नहीं, अगर बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ आज 6 बजे, आज मेंटेन हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक सोऊंगा, तो कैसा ट्रीटमेंट होगा आपका, मेंटेन कर पाएंगे? लेकिन भगवान एक छोटे से परिवार को मेंटेन करने के लिए सोने का नाम निशान, मुझे सोने में सुखने में ही सोचते हैं क्या करूं, कब उठूं, क्या भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव है, उनको मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने का दायित्व तो उनका है, पालनहार है, पोषण करते हैं, कैसे करते हैं, सो करके, कारण का साई कारण सागर में सोए हुए, गर्भोदक साई गर्भ सागर में सोए हुए, क्षीरोदक हमेशा सोते ही रहते हैं, सोते सोते इसे मेंटेन करते हैं, अगर वो जगते होते तो, है ना? नहीं तो हम लोग जगह जगह तो मरे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अब फिर भी बोलते हैं हम भगवान बन जाएंगे, तो कैसे सोच कैसे सकते हैं, है ना? नहीं तो श्री भगवान ने इस ज्ञान को करोड़ों 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 साल पहले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लड़ाई के समय पर उसको दें, नहीं। इस ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है क्या? नहीं, ब्रह्म विद्या है, ये योग है, भगवान को, जीव को भगवान के साथ जोड़ना, यही ज्ञान का उद्देश्य है। इसीलिए भगवान ने सूर्य को दिए कि सूर्य है ग्रहराज, समस्त ग्रहों के राजा है, राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, अशेष तेज संपन्न ग्रहराज है। तो ये राजविद्या है, भगवान कहते भी आगे ये राजविद्या है, ये विद्या राजाओं के लिए होना चाहिए। मतलब जो मेंटेनर है, जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं भी कुछ मालिक हूं, मैं कुछ, मेरे अंडर कुछ हैं, तो उसको ये ज्ञान जानना चाहिए। इस ज्ञान के बिना ना तो मालिक हो सकता है, ना राजा हो सकता है, ना अधिकारी हो सकता है। प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक मालिक को, प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक अथॉरिटी को, प्रत्येक राजा को यह ज्ञान जानना चाहिए, तभी तो मेंटेन करे, तभी तो पालन करे, तभी तो शासन करे, तभी तो गाइड करे। इसी के लिए ज्ञान दिया गया था। इसी ज्ञान को अर्जुन ने, आप जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में इतने विषादग्रस्त था, रो रहा था, हाई टेम्परेचर में बैठ करके धनुष फनुष हाथ से गिर गया था, है ना? गांडीवम संसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते, यहां तक अर्जुन कहते हैं। गांडीव धनुष हाथ से सरक गया और शरीर में इतने ज्वलन पैदा हो रहा है। इस स्थिति में भगवान ने उनको समझाए, कोई इंजेक्शन नहीं दिए, कोई सलाइन दिए, क्रोसिन कुछ नहीं चढ़ाए, वही खड़े खड़े स्टीयरिंग पकड़े हुए कुछ बात बोले। इस बात को सुन करके अर्जुन तुरंत खड़े हुए, जो जो पॉइंट बताए थे कि दोष लगेगा, पाप भय कुलक खय दोष मित्र द्रोह च पातकं स्वजन हतम, सारे पॉइंट को निकाल करके रेडी, अभी मैं मारूंगा, नष्ट मोहं श्रुति लब्धा, अब मेरा दिमाग ठीक हो गया है, मोह चला गया है, अब श्रुति प्राप्त कर लिया है, अब बिल्कुल करिष्ये वचनं तव, अब बताओ तेरे गुरुजी को मारेगा, अभी मारता हूं, तेरे दादा को अभी मारता हूं, बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गया। आपने आपको देह नहीं माना, देह के संबंधियों को अपना नहीं माना, ये पूरे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा देगा। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के अभाव से हम शोक से ग्रस्त हैं, मोह से ग्रस्त हैं, भय से ग्रस्त हैं। यही ज्ञान के द्वारा इस तीनों से आप बच सकते हैं। इस ज्ञान को इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है जो शोक मोह भय से ग्रस्त हैं, विषाद से ग्रस्त हैं। इसी के लिए जो बड़े बड़े अथॉरिटी हैं, इनको ये ज्ञान होना चाहिए ताकि सभी को समझाएं, तभी सब सुखी रह सकते हैं और अपने जीवन को सफल समृद्धि कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रहराज को सबसे पहले भगवान इस ज्ञान दिए थे करोड़ों साल पहले, और उन्होंने भी इस महा इंपोर्टेंट ज्ञान को, महाविद्या को, मनुष्यों के जो राजा जिससे मनुष्य सृष्टि हुए, मनु महाराज को दिए। मनु महाराज ने उनको, महाराज इक्ष्वाकु जो प्रथम मनुष्य कहा गया, सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु, उनको दिए। तो इसी के चलते ये प्रमाणित होता है प्रत्येक मनुष्य को, मनुष्य शुरू हुआ ना ज्ञान, प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान बहुत ही आवश्यकता है। इस ज्ञान के बिना तो हम लोग मनुष्य नहीं हो सकते, पशु ही हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र ही इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, इसीलिए मनु को दिया गया। अगर मनु के वंशज होकर के इस ज्ञान को हम नहीं पाए तो हम मनुष्य खाता में नहीं, हम पशु हैं, टू लेग्ड एनिमल, भले दो पैर दो हाथ हो लेकिन पशु जैसा। तो इसलिए इस भगवद गीता के ज्ञान हम लोग, आपने आपको अगर मनुष्य कहलाना चाहेंगे तब से कम इसको हाथ में लो और उसको पढ़ने के लिए प्रयास करो, समझने के लिए प्रयास करो, सुनो समझो, तब मनुष्य पदवाच्य हो सकते हैं, है ना? तब मनुष्य जीवन का लक्ष्य को समझेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, जीवन सफल काम हो सकता है। तो ये भगवद गीता कोई साधारण ज्ञान नहीं है, साधारण भौतिक ज्ञान नहीं है कि इसे शुरू हुआ इसको दिया जाएगा, नहीं कि इसी प्रकार स्टूडेंट को बताएगा कि इसके, ये अपौरुषेय है, भगवान के द्वारा दिया गया, किसी के द्वारा सृजन लिखा गया, मैं लिख दिया, मैं बना थेसिस, ऐसा नहीं। साक्षात भगवत ज्ञान है। उसके स्तुति करते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं ये सचमुच भगवान ने अर्जुन को नहीं दिए थे ये ज्ञान। बोले अर्जुन दिए थे, हम आपको क्यों, हम आप लोग को क्यों बताते हैं आकर। अर्जुन के लिए बोले थे भगवान ने, हम लोग के लिए थोड़ी बोले थे। तो आचार्य कहते हैं कि बोले नहीं, अर्जुन के लिए नहीं, ये हम लोग के लिए दिया गया था। किस लिए, कैसे? वो बोलते हैं सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वश सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। कि जब समस्त वैदिक वाङ्मय, समस्त वेद उपनिषद पुराण सब एक गाय बन करके आया, एक गाय बन जाता है तो गाय से सबसे इंपोर्टेंट चीज अब क्या प्राप्त करते हैं, दूध पाते हैं। तो केवल गाय आ गया, दूध निकाल लें उनसे ना, और कुछ चाहिए? बछड़ा तो चाहिए ना, बिना बछड़ा में दूध तो नहीं निकलेगा। तो बछड़ा कौन होगा फिर? पार्थ बच्छा, पार्थ मतलब अर्जुन ही बछड़ा बना। सारे वैदिक वाङ्मय वैदिक शास्त्र यदि गाय बने तो गाय का बछड़ा कौन बना? अर्जुन। तो गाय आ गया, बछड़ा आ गया, अभी दूध निकलेगा क्या? दूहने वाला चाहिए ना, आपको दूहना आता है क्या? कोई मिल्क मैन चाहिए ना, तो दूहने वाला कौन है? ऐसे गाय से कोई साधारण गाय तो है नहीं, वैदिक शास्त्र रूपी गाय है, उससे दूध कौन निकालेगा? दूध निकालने वाला स्वयं गोपाल नंदन, गोपराज नंदनंदन कृष्ण ही मिल्क मैन बन करके आए, दूहने वाला बन करके आए, दूध निकालेंगे भगवान कृष्ण स्वयं। अर्जुन बना बछड़ा, सारे वैदिक शास्त्र बने गाय, भगवान ने बने दूहने वाला, दूध दूहने वाला। अभी आप लोग बताए, आप लोग सो गाय तो देखे होंगे, पाले होंगे, जब गाय से ग्वाला दूध निकालता है बछड़ा को लगा करके, तो जो दूध निकलता है उसको कौन पीता है? गाय पीता है ना, बछड़ा पीता है ना, जो दूध निकलता है वो पीता है, तीनों से कौन पीता है ना? तीनों बांट कर पीते हैं, बताइए। प्रभु जी ने बता दें, तीनों में से किसी को नहीं मिलता, बताओ। बछड़ा तो मुंह लगा करके दूध निकालने के लिए, उसको बछड़ा पी जाएगा थोड़ी, बछड़ा को तो कारण बनाते हैं दूध निकालने के, बछड़ा दूध नहीं पीता, जो दूध निकालता है वो भी नहीं दूध पीता, और गाय तो पीता ही नहीं, तो कौन पीता है? इसमें कहा गया आप जैसे सुधीजन है, सुधीर भोक्ता, इस दूध के भोक्ता कौन है? आप जैसे भक्तजन है, सुधीजन है। तो इस गीता की रूपी अमृत, दुग्ध रूपी अमृत को भगवान ने किसके लिए दिया? अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो बछड़ा था, उसको केवल मुंह लगाए थे, उनको थोड़ी दूध थोड़ी हो पिया, आप लोग पियेंगे, इसलिए आप लोग के लिए ही ये गीता है। उसको प्राप्त कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए और अपना जीवन को धन्य करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
एक क्वेश्चन, सिंगल वन क्वेश्चन
बोलिए। क्योंकि वो कैंडिडेट गीता के लिए योग्य नहीं था, जो मरीज को जो मेडिसिन चाहिए था ना, वो मरीज इसके लायक नहीं था, तो उसको देने से क्या होगा? फिर आपको कब के बीमारी हुआ है? खांसी जुखाम हुआ है आपको? जुखाम हुआ है, मैं पेट का बीमारी का दवाई ला कर दूंगा, वो काम करेगा? हाँ तो है।
हरे कृष्ण, सब लोग बैठे रहेंगे, अभी प्रसाद शुरू नहीं होगा बाहर, कृपया करके बैठ जाएं, अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, काइंडली सिट डाउन प्लीज।
तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध थे, उनको गीता भी समाधान नहीं कर पाया, क्योंकि गीता के लायक वो नहीं थे। मैं बोला गीता के सबसे पहले गीता के लायक तो भक्त ही हो सकते हैं, नहीं तो गीता को ज्ञान के द्वारा वैराग्य के द्वारा गीता नहीं समझा जा सकता है, समझ में? बिना भक्ति से गीता समझ नहीं सकते, ये रहस्य है। गीता का एक पर्टिकुलर छंद है। हाँ, क्योंकि भगवान ने रचा इस प्रकार उसको, बोले इस प्रकार से। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यही तो भगवान की भगवत्ता है, वो इस प्रकार कवि है, बोलते गए तो ऐसे मीटर में, ऐसे परफेक्ट वे में बताया कि बिल्कुल सब साइज से गया, इसके कवित्व पता चलता है। जो बहुत बड़े कवि होते हैं उनका कविता से पता चलता है, बिल्कुल छंद अलंकार बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है। ये गीता इस प्रकार प्रकृत छंद में आया है।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना कितना सुंदर तरीके से भगवत गीता का इतिहास, भगवत गीता का डीपली रहस्य बहुत ही सुंदर विश्लेषण महाराज जी ने किया। तो हम कटल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करेंगे। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, आप कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिएगा। देखिए 18 तारीख को एकादशी है, उत्पन्न एकादशी, पाप लोग ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि कई बार यहाँ पर अनाउंसमेंट में बताया गया है कि एकादशी को जो कि पाप है वो अन्न के अंदर अपना आश्रय ले लेता है, तो एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और अगले दिन का जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो 6:46 AM से लेकर और 10:19 AM तक है, यानी उसके बीच में आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं नेक्स्ट डे। दूसरा अनाउंसमेंट है, इस्कॉन द्वारका के अंदर हमारे भक्त